नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम पत्थरों में छिपी एक ऐसी दुनिया की पड़ताल करने जा रहे हैं जो अरबों साल पुरानी है। हम बात कर रहे हैं कीथ थॉम्सन की किताब फॉसिल्स यानी जीवाश्म के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे पत्थर के ये खामोश टुकड़े पृथ्वी पर जीवन की सबसे लंबी और शायद सबसे हैरतअंगेज कहानी सुनाते हैं।
और ये कहानी सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, है मा? ये सीधे तौर पर हमारे आज और आने वाले कल से जुड़ी हैं।
बिल्कुल।
जब हम क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी के संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो अतीत के ये सबक एक चेतावनी की तरह है।
चेतावनी।
जीवाश्म हमें दिखाते हैं कि जीवन कैसे बदलता है, कैसे विनाश का सामना करता है और कैसे आप कह सकती हैं राख से फिर खड़ा होता है।
तो ये सिर्फ डायनासोर की कहानी नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे अपने अस्तित्व की कहानी है।
बिल्कुल। और इस कहानी को सुनाने वाले लेखक कीथ थॉम्सन, वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि वो डीप टाइम के मतलब गहरे समय के एक कहानीकार हैं।
सही कहा।
वो एक बहुत मशहूर जीवाश्म विज्ञानी हैं, येल और ऑक्सफोर्ड जैसे संस्थानों में पढ़ा चुके हैं, लेकिन उनकी असली कला तो जटिल विज्ञान को एक रोमांचक किस्से में बदलने की है।
हाँ, और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। उनका ज्यादातर रिसर्च इस बात पर रहा है कि मछलियां पानी से निकलकर जमीन पर कैसे आईं।
अच्छा।
उन्होंने तो प्रसिद्ध लिविंग फॉसिल कोयलाकैंथ पर भी बहुत काम किया है।
वाह।
पर उनकी जो खूबी है वो ये है कि वो एक वैज्ञानिक और एक इतिहासकार, मतलब दोनों की नज़र से लिखती हैं। वो सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझाती हैं कि हमें ये कैसे पता चला
और ये जानना आज क्यों जरूरी है।
एग्जैक्टली।
तो चलिए इस किताब की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। थॉम्सन का सबसे बड़ा तर्क ये है कि जीवाश्म सिर्फ म्यूजियम में रखी पुरानी हड्डियां नहीं है। ये पत्थर में लिखे ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। असल में पृथ्वी पर जीवन के 4 अरब साल के इतिहास का हमारे पास एकमात्र सीधा फिजिकल सबूत यही जीवाश्म है।
ये बहुत बड़ी बात है।
हाँ, बाकी सब कुछ तो अनुमानों पर आधारित है, लेकिन जीवाश्म वो असली हैं।
और इसी से किताब का वो सबसे बुनियादी सवाल उठता है ना?
कौन सा?
कि हम प्रागैतिहासिक जीवन के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, वो आखिर जानते कैसे हैं? ये किताब असल में हमें जीवाश्मों के एक भाषा पढ़ना सिखाती है।
जीवाश्मों की भाषा?
ये दिलचस्प है।
हाँ,
हाँ, एक ऐसी भाषा जो हमें एक खोई हुई दुनिया, महाविनाश के दौर और उस अटूट सुनहरी कड़ी के बारे में बताती है जो आज के हर जीव को, चाहे वो हम हो या कोई छोटा कीड़ा, अतीत के सबसे सरल जीवन रूपों से जोड़ती है।
तो अगर हमें ये जीवाश्मों की भाषा सीखनी है तो सबसे पहले तो इसके अक्षर सीखने होंगे। मेरा मतलब, एक जीवाश्म असल में होता क्या है? क्या ये सिर्फ पुरानी हड्डियां हैं?
नहीं, और यही सबसे आम गलतफहमी है। जीवाश्म का मतलब सिर्फ हड्डियां नहीं, बल्कि प्राचीन जीवन का बचावा कोई भी निशान है।
कोई भी निशान? जैसे?
जैसे डायनासोर के पैरों के निशान, जिन्हें ट्रेस फॉसिल कहते हैं, या किसी पेड़ की पत्ती की छाप जो कीचड़ में दब गई हो।
अच्छा।
यहाँ तक कि करोड़ों साल पुराने बैक्टीरिया द्वारा छोड़े गए केमिकल निशान भी जीवाश्म हो सकते हैं।
ये तो कमाल है। मतलब हम सिर्फ ये नहीं जानते कि कोई जानवर कैसा दिखता था, बल्कि ये भी जान सकते हैं कि वो चलता कैसा था।
बिल्कुल।
वैसे जब तक विज्ञान इतना आगे नहीं बढ़ा था, तब लोग इन अजीब पत्थरों को देखकर क्या सोचते होंगे?
अरे, उनकी कल्पनाएं तो और भी दिलचस्प थीं। जैसे पुराने ग्रीस के लोग मानते थे कि ये ग्रिफिन जैसे पौराणिक जीवों की हड्डियां हैं।
अच्छा।
हाँ, और सदियों तक यूरोप में इन्हें या तो प्रकृति का मजाक माना जाता था, या फिर बाइबल में जो बाढ़ का जिक्र है उसमें मारे गए जीवों के अवशेष। फिर 17वीं सदी में निकोलस स्टेनो जैसे विचारकों ने पहली बार ये वैज्ञानिक विचार रखा कि ये सच में कभी जीवित रहे जीवों के अवशेष हैं जो पत्थर में बदल गए।
तो मतलब वहां से कल्पना का दौर खत्म हुआ और विज्ञान का शुरू।
हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं।
ठीक है, तो एक बार जब ये मान लिया गया कि ये असली जीवों के अवशेष हैं, तो अगला सवाल ये होगा कि ये बनते कैसे हैं?
थॉम्सन इसे एक असंभव चमत्कार कहती हैं।
एक असंभव चमत्कार?
हाँ, और ये सच भी है। सोचिए, किसी जीव के मरने के बाद उसके जीवाश्म बनने की संभावना ना के बराबर होती है।
क्यों?
क्योंकि ज्यादातर जीव मरने के बाद या तो सड़ जाते हैं या उन्हें दूसरे जानवर खा जाते हैं। जीवाश्म बनने के लिए कुछ खास हालात चाहिए, जैसे जीव को मरने के तुरंत बाद कीचड़, रेत या ज्वालामुखी की राख में दब जाना चाहिए।
अच्छा, ताकि वो बच जाए।
हाँ, इससे उसका शरीर ऑक्सीजन और बैक्टीरिया से बच जाता है।
तो अगर ये प्रक्रिया इतनी दुर्लभ है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जीवाश्म रिकॉर्ड बहुत अधूरा होगा।
बिल्कुल,
हमें ज्यादातर उन्हीं जीवों के अवशेष मिलते होंगे जिनके शरीर में हड्डियां या शेल जैसे कठोर हिस्से थे।
सही,
तो फिर हम इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं कि जीवन सरल से जटिल हुआ? क्या ये मुमकिन नहीं कि हमें बस एक खास तरह के ही जीवाश्म मिले हों और पूरी कहानी कुछ और हो?
ये एक बहुत जरूरी सवाल है और वैज्ञानिक इस लिमिटेशन को अच्छी तरह समझते हैं। जीवाश्म रिकॉर्ड अधूरा है, बिल्कुल एक ऐसी किताब की तरह जिसके कई पन्ने फटे हुए हैं। लेकिन जो पन्ने हमारे पास हैं वे एक बहुत ही कंसिस्टेंट कहानी सुनाते हैं।
और इस कहानी को समझने के लिए हमें समय को मापना सीखना पड़ा।
एग्जैक्टली, जिसका एक तरीका है स्ट्रैटिग्राफी, मतलब चट्टानों की परतों का अध्ययन।
ये तो आसान लगता है, जो परत सबसे नीचे वो सबसे पुरानी।
हाँ, सिद्धांत तो यही है, पर इससे सिर्फ ये पता चलेगा कि कौन पुराना है और कौन नया। उनकी ठीक ठीक उम्र कैसे पता चलती है? क्या हम कह सकते हैं कि ये जीवाश्म ठीक 15 करोड़ साल पुराना है?
हाँ, यही मेरा अगला सवाल था।
हाँ, और इसी तकनीक ने सब कुछ बदल दिया। इसे कहते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग।
रेडियोमेट्रिक डेटिंग,
आसान भाषा में, चट्टानों में कुछ रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो एक तय स्पीड से सड़ते हैं। वैज्ञानिक इन्हें मापकर चट्टान की उम्र का सटीक पता लगा सकते हैं। इसी ने हमें डीप टाइम यानी समय की अथाह गहराई का एहसास कराया।
ये जानना कि पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है, ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं, ये तो पूरा नजरिया बदल देता है।
बिल्कुल,
तो यहीं से कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता होगा, विकास का सबूत।
हाँ, अगर चट्टानों की उम्र पता है और उनमें मिले जीवाश्मों का क्रम भी, तो तस्वीर साफ हो जाती होगी।
बिल्कुल,
जीवाश्म रिकॉर्ड विकास के सिद्धांत का सबसे ठोस, सबसे सीधा सबूत है। हमें सबसे पुरानी चट्टानों में सिर्फ बैक्टीरिया जैसे सरल एक कोशिकीय जीव मिलते हैं। फिर करोड़ों साल बाद हमें मल्टीसेलुलर जीव दिखते हैं, फिर मछलियां, फिर जमीन पर आने वाले जीव, फिर डायनासोर, और सबसे नई परतों में स्तनधारी और इंसान।
और ये क्रम कभी उल्टा नहीं मिलता?
कभी नहीं, आपको कभी भी डायनासोर की हड्डियों वाली परत में इंसान का जीवाश्म नहीं मिलेगा।
और सबसे बड़ा सबूत शायद वो संक्रमणकालीन जीवाश्म होंगे, है ना, जो दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच की कड़ी जैसे दिखते हैं।
हाँ, ट्रांजिशनल फॉसिल्स। किताब में कई उदाहरण हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है आर्कियोप्टेरिक्स।
आर्कियोप्टेरिक्स,
ये एक ऐसा जीव था जिसमें डायनासोर और पक्षी दोनों की खासियतें थीं। उसके मुंह में डायनासोर की तरह दांत थे, हाथों में पंजे थे, एक लंबी हड्डी वाली पूंछ थी,
लेकिन
साथ ही उसके पूरे शरीर पर पक्षियों की तरह पंख थे। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि पक्षी डायनासोर से ही विकसित हुए हैं।
ये तो कमाल है, लेकिन आलोचक ये भी तो कह सकते हैं कि जीवाश्म रिकॉर्ड में बड़े बड़े गैप हैं। क्या हमारे पास वेल जैसे किसी विशाल जानवर के विकास की भी ऐसी कोई सिलसिलेवार कहानी है?
और यही जीवाश्म विज्ञान की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है।
अच्छा,
हमारे पास अब जीवाश्मों की एक पूरी श्रृंखला है जो दिखाती है कि कैसे भेड़िए जैसे दिखने वाले जमीन पर रहने वाले जानवर धीरे धीरे पानी में रहने लगे। हमें ऐसे जीवाश्म मिले हैं जिनकी नाक धीरे धीरे सिर के ऊपर खिसकती गई और ब्लो होल बन गई। उनके पिछले पैर छोटे होते होते गायब हो गए। ये किसी जासूसी कहानी की तरह है।
मैंने एक और जीवाश्म के बारे में पढ़ा है, नाम थोड़ा अजीब था, टिक्तालिक। उसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
अरे हाँ, टिक्तालिक, उसकी खोज तो अपने आप में एक कहानी है। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की कि उन्हें एक खास जगह पर सही उम्र की चट्टानों में पानी से जमीन पर आने वाले पहले जीवों के जीवाश्म मिलेंगे।
और उन्हें मिल गए?
और वे सही थे। टिक्तालिक को फिश पॉड कहते हैं, मतलब आधी मछली आधा जमीनी जानवर।
फिश पॉड?
हाँ, उसमें मछली की तरह गलफड़े और शल्क थे, लेकिन उसका सिर चपटा था, उसकी गर्दन थी, और सबसे बड़ी बात, उसके पंखों के अंदर हाथ की हड्डियों का पूरा ढांचा था।
मतलब वो पुशअप्स कर सकती थी।
बिल्कुल, ये पानी और जमीन के बीच की एक आदर्श कड़ी है।
तो जीवाश्म हमें जीवन के पनपने की कहानी तो सुनाते हैं, लेकिन क्या वे हमें जीवन के अंत के बारे में भी कुछ बताते हैं?
हाँ, और ये भी एक क्रांतिकारी खोज थी। 19वीं सदी तक लोग मानते थे कि प्रजातियां हमेशा रहती हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकती।
अच्छा,
फ्रांसीसी वैज्ञानिक जॉर्जिस कुवियर ने पहली बार मैमथ की हड्डियों का अध्ययन करके ये साबित किया कि प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती हैं। उस समय ये एक बहुत बड़ा और विवादास्पद विचार था।
और यहीं से सामूहिक विलुप्ति या मास एक्सटिंक्शन का आइडिया आया होगा, जैसे डायनासोर का अंत।
बिल्कुल, जीवाश्म रिकॉर्ड हमें दिखाता है कि पृथ्वी के इतिहास में कम से कम 5 ऐसे दौर आए हैं जब बहुत कम समय में 70 से 90% प्रजातियां खत्म हो गईं।
और सबसे प्रसिद्ध तो वो एस्टेरॉयड वाली घटना है।
हाँ, 6.6 करोड़ साल पहले वाली। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, यही हम विलुप्ति का दोहरा चेहरा देखते हैं। डायनासोर के लिए ये अंत था, लेकिन हमारे पूर्वजों यानी छोटे स्तनधारियों के लिए,
उनके लिए ये एक मौका था।
ये दुनिया का सबसे बड़ा मौका था। यह एक विनाश था जिसने सृजन के दरवाजे खोल दिए।
तो चलिए इन सभी बातों को एक साथ पिरोते हैं। इस किताब से निकलने वाले कुछ मुख्य संदेश क्या हैं? मेरे लिए पहला और सबसे गहरा संदेश तो डीप टाइम की अवधारणा है।
ये सिर्फ विनम्रता की बात नहीं है, है ना? डीप टाइम की अवधारणा हमारे हर काम का महत्व बदल देती है।
कैसे?
ये हमें सिखाती है कि हम किसी कहानी के मुख्य पात्र नहीं है, बल्कि एक विशाल नाटक में एक क्षणिक किरदार है। हमारी बनाई हर समस्या, जैसे प्लास्टिक प्रदूषण, एक भूवैज्ञानिक परत बन जाएगी जिसे लाखों साल बाद कोई और पढ़ेगा।
ये एक अलग तरह की जिम्मेदारी का एहसास कराता है।
सही।
और दूसरा संदेश ये लगता है कि विकास कोई सीधी सीढ़ी नहीं है जिस पर चढ़कर हम इंसान शिखर पर पहुंच गए।
बिल्कुल भी नहीं। ये एक उलझी हुई शाखाओं वाली झाड़ी की तरह है जिसका कोई तय लक्ष्य नहीं है। हमारा अस्तित्व लाखों संयोगों का नतीजा है।
मतलब अगर वो एस्ट्रॉइड कुछ मिनट पहले या बाद में टकराता
तो शायद हम इंसान यहाँ बात करने के लिए होते ही नहीं। ये हमें हमारे अस्तित्व की आकस्मिकता का एहसास कराता है।
और तीसरा संदेश कि विलुप्ति केवल विनाश नहीं है।
हाँ, वो एक रचनात्मक शक्ति भी है। वो इकोसिस्टम को एक तरह से रीसेट कर देती है। जब कोई प्रभावी समूह खत्म होता है तो वो दूसरों के लिए नए अवसर पैदा करता है।
विनाश और सृजन का एक अंतहीन चक्र।
बिल्कुल।
किताब में जरूर कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार होंगे जो इन संदेशों को अच्छे से समेटते हैं।
हाँ, कुछ हैं जो वाकई में सोचने पर मजबूर करते हैं। पहला तो यही है कि जीवाश्म पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का एकमात्र सीधा सबूत है। वे पत्थर में बदल गया इतिहास है।
मतलब ये सिर्फ एक वस्तु नहीं है बल्कि एक घटना का रिकॉर्ड है।
सही।
मुझे एक और विचार बहुत पसंद आया, हर जीवाश्म एक लॉटरी का विजेता है।
हाँ, ये कितनी खूबसूरती से बताता है कि किसी जीव का जीवाश्म बनना कितना दुर्लभ और कीमती है।
हर एक नमूना अतीत की एक अनमोल खिड़की जैसा है।
और अंत में ये विचार जो विलुप्ति को एक नया नजरिया देता है। विलुप्ति विकास का विपरीत नहीं है, ये नवाचार के लिए उसका सबसे शक्तिशाली उपकरण है।
ये हमें सिखाता है कि बड़े बदलाव अक्सर बड़ी तबाही के बाद ही आते हैं।
विनाश के बाद सृजन की कहानी।
ये सब जानना बौद्धिक रूप से तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? मतलब ये जानना कि एक 37.5 करोड़ साल पुरानी मछली पुशअप्स कर सकती थी, हमारे आज के जीवन को कैसे प्रभावित करता है?
इसका सीधा और सबसे जरूरी संबंध जलवायु परिवर्तन से है।
अच्छा।
जीवाश्म रिकॉर्ड हमें दिखाता है कि अतीत में जब भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर तेजी से बढ़ा या जलवायु में बड़े बदलाव हुए तो जीवन पर उसका क्या विनाशकारी असर हुआ।
मतलब ये हमें चेतावनी देता है।
हाँ, ये ग्रह के पैमाने पर किए गए प्रयोगों का नतीजा है जो हमें चेतावनी देता है कि हम आज क्या कर रहे हैं।
और शायद ये हमें मौजूदा जैव विविधता संकट को भी बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।
बिल्कुल। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर एक दो प्रजातियां विलुप्त हो भी गईं तो क्या फर्क पड़ता है। जीवाश्म रिकॉर्ड इसका जवाब देता है। वो हमें बताता है कि पिछली सामूहिक विलुप्तियों के बाद जीवन को अपनी विविधता वापस पाने में 50 लाख से 1 करोड़ साल लग गए।
इतना लंबा समय।
हाँ, तो हम आज जो प्रजातियां खो रहे हैं उन्हें वापस आने में लाखों साल लगेंगे। ये हमें संरक्षण के प्रयासों की तात्कालिकता का एहसास कराता है।
और आखिर में शायद एक ज्यादा व्यक्तिगत स्तर पर यह हमें हमारी अपनी जड़ों से जोड़ता है।
बिल्कुल। ये याद दिलाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि उसी का एक हिस्सा हैं। ये जानना कि हमारे हाथ की हड्डियां टिकतालिक जैसी प्राचीन मछलियों के पंखों का ही बदलावा रूप है, ये गहरा और विनम्र करने वाला एहसास है।
हमारी कहानी कुछ हजार साल पहले नहीं बल्कि अरबों साल पहले शुरू हुई थी।
हम चलते फिरते बात करते जीवाश्म हैं।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि जीवाश्म विज्ञान कोई धूल भरा पुराना विषय नहीं है। ये तो जासूसी के काम जैसा है, जहां वैज्ञानिक पत्थर के कुछ टुकड़ों से पूरी की पूरी दुनिया को फिर से जीवंत कर देते हैं। ये देखना आश्चर्यजनक है कि कैसे वे सिर्फ कुछ हड्डियों से ये पता लगा लेते हैं कि कोई जानवर क्या खाता था, कितनी तेजी से दौड़ता था
और किस तरह की दुनिया में रहता था।
हाँ,
और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात डीप टाइम से मिला नजरिया है। ये समझना कि हमारा मानव इतिहास इस ग्रह की कहानी के आखिरी पन्ने का आखिरी पैराग्राफ है, ये हमारे अहंकार को कम करता है
और एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है।
हाँ, ये किताब हमें ये याद दिलाती है कि हम इस ग्रह पर एक लंबी और जटिल विरासत के हिस्सेदार हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके भविष्य को समझदारी से आकार दें। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकित्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।